नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के साथ चर्चा करेंगे। भारत ने 2025-26 में 860 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। उज्बेकिस्तान के नवांगन में गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक शुरू। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी के बीच पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ा। और भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।
दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ श्री स्टॉकर की चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोलेगी। चांसलर स्टॉकर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। चांसलर स्टॉकर की ये भारत की पहली यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच गर्मजोशी भरे मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ किया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
जनगणना 2027 का पहला चरण आज से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि ये कार्य 15 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर घर जाकर मकानों के आंकड़े एकत्र करेंगे।
मकानों की गणना का अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्रों में शुरू हो रहा है। पहली बार स्वगणना सुविधा शुरू की गई है ताकि लोग अपने आप जानकारी उपलब्ध करा सकें। अब तक लगभग 12 लाख परिवारों ने अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कराई है। ऐसे लोगों से अपनी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी संभाल कर रखने और फील्ड विजिट के दौरान गणकों को बताने का आग्रह किया गया है। जनगणना के लिए पहली बार डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में आज से स्वगणना सुविधा शुरू की जा रही है। बिहार में स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई तक होगी। राज्य में 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर मकानों की गणना की जाएगी। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 860 अरब अमरीकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हासिल इस उपलब्धि से पता चलता है कि भारत वैश्विक व्यापार में मजबूती से विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 व्यापार समझौते इस गति को और तेज करने के साथ नए बाजार खोल रहे हैं और सभी क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कारोबार करना आसान बनाने और व्यापार तथा निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार के प्रयास इस विकास को गति प्रदान करते रहेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के पहलुओं पर चर्चा हुई। समझौते पर चर्चा के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाने वाला है। फरवरी में भारत और अमेरिका ने आपसी व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। इसी के बाद अमेरिका भारत पर शुल्क घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था। पिछले सप्ताह विदेश सचिव विक्रम मिश्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भी द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा हुई थी। अमेरिका ने रूस या ईरान से तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में कोई छूट देने से इंकार किया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मौजूदा रियायतें फिर से लागू नहीं रखी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि छूट 11 मार्च से पहले तेल के आयात के लिए ही थी। पिछले महीने की 5 तारीख को अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध से 30 दिन की छूट दी थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच सातवां सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक कल से उज्बेकिस्तान के नमांगन स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच तालमेल को मजबूत करना है। इस अभ्यास में अवैध हथियारबंद गुटों के खात्मे के लिए संयुक्त अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह अभ्यास 25 अप्रैल तक चलेगा। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी और कड़ी कर दी है, जबकि इसराइल दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखे हुए है।
पश्चिम एशिया की स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि वो संघर्ष को प्रमुख समुद्री मार्गों तक फैला सकता है। ईरान लाल सागर में पिछले हमलों की तरह ही समुद्री मार्गों को निशाना बनाने के लिए यमन में हौसी विद्रोहियों जैसे अपने सहयोगी गुटों पर निर्भर रह सकता है। इस तरह के कदम से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी असर पड़ सकता है। अमरीका में इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में सीधी बातचीत की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्ला को खत्म करना और शक्ति के बल पर स्थायी शांति हासिल करना है। जहां एक तरफ लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति भी आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
अमेरिका में रिपब्लिकन सांसदों के बहुमत वाले सदन सीनेट ने ईरान युद्ध रोकने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रयास को खारिज कर दिया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह संघर्ष अवैध और अनुचित है। 1973 के अमेरिकी कानून के अनुसार युद्ध शुरू होने के 60 दिन के भीतर इसकी घोषणा करनी होती है या बल प्रयोग को अधिकृत करना होता है। ये समय सीमा इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यालय की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने इन खबरों को खारिज किया है कि युद्ध विराम बढ़ाने की मांग अमेरिका ने की है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ राजनयिक वार्ता जारी है, लेकिन युद्ध विराम बढ़ाने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमरीका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। बातचीत में क्षेत्रीय तनाव तत्काल कम करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार विमर्श किया। उधर एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त अरब अमीरात और ईरान ने हाल के दिनों में पहली बार संपर्क स्थापित किया है। शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। 24 वर्षीय वैशाली ने साइप्रस में अंतिम दौर में रूस की कैटरीना लेगनो को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ वैशाली ने इस वर्ष होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जगह बना ली है। चैंपियनशिप में उनका सामना चीन की जू वेंजुन से होगा। पुरुषों का ओपन वर्ग खिताब उज्बेकिस्तान के जवाखिर सिंदारोव ने जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सत्र के अपने सबसे कम स्कोर 146 रन पर आउट हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 ओवर और एक गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बेंगलुरु के जॉश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के साथ चर्चा करेंगे। भारत ने 2025-26 में 860 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। उज्बेकिस्तान के नमांगन में गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक शुरू। ईरान के बंदरगाहों पर अमरीका की कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी के बीच पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ा। और भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।